तो बहरहाल अब ये सारी बातों के बाद आखिरी आयतें हैं सबक की, जिसमें अब ये बताया जा रहा है कि ये तो हराम नहीं, वो हराम नहीं, ये नहीं, ये बात हुई है ना कि तुम लोगों ने अपनी मर्जी से हराम कर लिया, अल्लाह ने तो नहीं किया। तो अब आखिर में बताया जा रहा है कि आओ तुम्हें बताऊं फिर इस्लाम में हराम क्या। यहाँ से आप देखिए कि हराम और हलाल का इशू अल्लाह सुब्हान तआला की नज़र में कितना अहम है कि लोगों की फरसूदा बातों को चैलेंज किया। खुला ज़करैन दो दफ़ा ये लफ्ज़ आया। अच्छा जी, तुम कहते हो ये हराम है, ये हराम है, ये तुम कहते हो, मैं नहीं कहता, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि फिर क्या हराम है। आयत नंबर 145, قل لا اجد فيما اوحي الي محرم لا طاعم يطعمه, कह दीजिए मैं तो नहीं पाता इस कुरान में जो मेरी तरह वही किया गया कोई चीज हराम किसी खाने वाले पर कि वो इसे खाता हो। एक छोटे से जुमले का इतना लंबा तर्जमा है, यानी तुम जिन बातों को कहते हो मुझे तो ये बातें हराम की लिस्ट में कहीं नहीं दिखती, हाँ मगर फिर क्या हराम है, इल्ला मगर अन यकून मैततन, सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो। इस पे नंबर 1 लिख लीजिए, यानी वही चार चीज़ें जो सूरत मायदा के शुरू में हम पढ़ चुके हैं उन्हीं का यहाँ इआदा है। अल्लाह ताला रिवीजन करवा रहे हैं हम सबको कि क्या चीज़ें दीन इस्लाम में हराम है। नंबर 1 अल मैता या मैततन मुर्दार, इसकी कितनी किस्में हमने पीछे पढ़ी सूरत मायदा की आयत 3 में, कोई बताएगा कौन कौन सी? अल मुनहनिकतु, अल मुतरद्दियतु और अल मौकूजा। ठीक है, मौकूजा, मुनहनिका और मुतरद्दिदा, गला घुटी हुई, रस्सी लिपटी हुई या बुलंदी से गिरी हुई, लाठी लगी हुई, यानी जो जानवर किसी भी वजह से खुद मर गया, ठीक है, या फिर उसको यह है कि मरने से पहले ज़िबा कर लिया गया तो वो भी हलाल है, ठीक है। ये है नंबर 1 मैता। नंबर 2 औ दमम मसफूहन या खून बहता हुआ। पीछे क्या गुजरा था? दम, सिर्फ खून, पता नहीं चला था कौन सा खून। यहाँ उसकी मजीद तफसीर आ गई, दमम मसफूहा। सफेहा किधर पढ़ा हमने, किसको कहते हैं सफेहा? यस्फिकुद्दिमा, ठीक है, वो सफिका था, ये सफेहा है, यानी खून या पानी का बहना, इससे मुराद है क्लीन ब्लड। देखिए गोश्त को आप जितना मर्जी धो के रखें ना, थोड़ी देर बाद फिर उसके अंदर गोश्त में खून निकल आता है। तो पीछे हम इस पर डिटेल से बात कर चुके हैं कि ब्लड जिस्म में बीमारियों का कैरियर होता है, गंदा भी होता है, काला थिक भी होता है। जब हम जानवर को स्लॉटर करते हैं तो उसका खून निकल जाता है, अब पीछे रह जाता है साफ खून, तो वो जायज़ है। और दमम मसूखा से मुराद गंदा खून है जो किसी भी जानवर के जिस्म से निकल चुका है। इसके अलावा तिली, जिसको आप क्या कहते हैं, स्प्लीन, ये हलाल है चाहे इसके अंदर खून ही होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ और लहम खिंजीर, खिंजीर का गोश्त, पिक का गोश्त, फाइन नहोरिज सुन, बस बेशक वो नापाक है, औ फिस्कन या फिस्क है, ठीक है। खिंजीर का गोश्त कौन सा है? नापाक भी है। यहाँ पे बात ख़त्म हो गई तीसरी, लहम खिंजीर पे बात पीछे हुई थी। क्या सिर्फ खिंजीर का गोश्त हराम है? जिसका लहम हराम है, उसकी खाल, उसकी लॉड, उसकी चर्बी, उसकी हर चीज़ हराम है, ठीक है। अब आप बताइए कि आपसे कोई पूछे कि सुअर का गोश्त क्यों हराम है, तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह का हुक्म है जी, ये सुनना चाह रही थी। वो जितनी आपको बातें लिखाई थी उसमें पोर्स नहीं, उसका पसीना गंदा, उसकी अंदर मेटाबॉलिज्म दिस एंड दैट, वो सिर्फ हमारी इंटेलेक्ट को तस्कीन देने के लिए, लेकिन हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने पैदा किया तो उसने कह दिया कि वो हराम है, ठीक है। यहाँ छोटी सी बात करूँगी कि पिग का गोश्त और उसकी खाल और उसके एवरीथिंग है। पिग के गोश्त को तो हम सभी, मेरा नहीं ख्याल, छूते भी हैं कभी, क्योंकि मुसलमानों में ये चीज़ तो मैं देखी, इवन वो लोग जो शराब से भी परहेज़ नहीं करते वो भी पिग के गोश्त को नहीं खाते। लेकिन इसकी जो खाल होती है स्किन, वो किसी तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर मुसलमानों के भी इस्तेमाल में आने का ख़तरा होता है, तो इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली देख लेना चाहिए। इसके बारे में एक चीज़ छोटी सी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपसे, और वो क्या है कि पिक की जो खाल होती है ना, इसके बाल बहुत मोटे होते हैं, तो जब ये खाल को साफ करते हैं तो उसके बाल खींचते हैं तो इसकी स्किन में पोर्स हो जाते हैं। अब जब पोर्स हो जाते हैं तो वो चमड़े से निकलते नहीं है, तो जो एक ब्रदर है जो लेदर का काम करते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जब भी कभी आप कोई पर्स या जूता या कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं तो आप उसको मेक श्योर कर लें कि अगर उसमें इस तरह की सिम्टम्स हो तो उसको चेक कर लें कि वो पिक का खाल होती है। और आम स्किन जो होती है उसकी निस्बत कहते हैं कि ये बहुत सस्ती होती है, क्योंकि आम होता है और आपको तक कि खाया बहुत जाता है जिन मुल्कों में, तो वहाँ सारे इसकी खाल भी होगी। तो अमूमन फिर जो लाइनिंग्स होती हैं ना जैकेट्स के अंदर या जूतों के अंदर के सोल है, उसमें ये लोग लगा देते हैं। अब ये बात तो एक आम है, ऐसी चीज़ें कभी भी आप कहीं कोई जूता ख़रीदते हैं, ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जूते होते हैं मोस्ट लाइकली उसमें आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ देख लें, और कुछ नहीं है तो अख्तियातन पूछ भी लें, कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह का एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। एक तो मेरे पास फ़ोन कवर था, तो उसके जो अंदर की लाइनिंग थी मुझे किसी ने देखी तो उन्होंने कहा कि इसमें तो इसकी खाल है, और वो लेदर का लग ही रहा था। बहरहाल मैंने उनके कहने पे वो फेंक दिया, मैंने इतना सोचा नहीं उसको फेंक दिया। इसी तरह मेरा एक जूता था, मैंने किसी मुस्लिम मुल्क से लिया हुआ था, बिल्कुल आम सा जूता था, बहुत ही सस्ता सा। तो वो जूता मैंने पहना तो उसको देखकर भी किसी एक, मतलब जाहिर है कि जब ऐसी बातें होती हैं घरों में, बच्चे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, तो एक बच्ची थी जिसने इस मौजू पे पहले बात कुछ सुनी होगी, तो उसने मेरा वो जूता देखा तो मुझे कहा कि, जाहिर झिझकते भी कहा लेकिन खुलासा ये था कि आपके जूते में पिक्का लगा हुआ है, फेंक दें इसको, देखा तो वाकई उसमें सुराख थे। अब मेरे जेब में सिर्फ एक क्वेश्चन था कि मैंने तो एक मुस्लिम मुल्क से लिया, तो पड़ा रहा जूता, मैंने इस्तेमाल नहीं किया उसके बाद। सिर्फ वो दिल की बात बता रही हूँ, या जिसको आप कहना चाहिए कि दिल का ख्याल पूरा करना, मैंने दोबारा मुझे उधर जाने का इत्तफाक हुआ और इत्तफाक से वो जूता मेरे साथ चला गया। मैं उसी दुकान पे भेजा, मैंने उनको कहा कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि, और वो बड़ी मशहूर दुकान थी, रेड टैग मेरा हेले नाम है क्या, मैंने सेल में से वो शायद आपके 3-4 पाउंड का जूता बना होगा। तो मैं जब इस दफ़ा गई तो वो मैंने कहा कि मैंने सिर्फ एक दिल का वहम दूर कराना है कि मुस्लिम मुल्क में रहते हुए अगर ये ऐसी चीज़ें बना रहे हैं तो मुझे तो पता चल गया है, तो कईयों को तो नहीं पता होगा, और फेंकने को मेरा दिल ना करे चाहे वो 1 या 50 सेंस का भी होता, क्योंकि मैं ज़ाया क्यों करूँ। किस्सा मुख्तसर, फिर वो हम लेके काउंटर पे गए, तो जब भाई ने उनसे बात की तो ना वो परेशान हो गए, ना पूछा कि क्या आप पिक की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता हमारे पास। खैर हमने जूता निकाल के बाहर रखा और उनको बताया कि देखें इसमें इतने मोटे मोटे सुराख हैं, दिस एंड दैट। उन्होंने मैनेजर को बुला लिया, जब उसने देखा तो उसने फिर पकड़ा, कहता कि ये तो लेदर ही नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। फिर उसने बताया कि ये पूरा जूता जो है ये आर्टिफिशियल लेदर है और ये सिंथेटिक है, तो ये पिक्का नहीं है। अब ये छोटी सी बात मैंने आपको क्यों शेयर की, आज भी वही जूता पहनना होगा मेरा ख्याल है, मैंने आजकल वही पहन रही हूँ, बिल्कुल लाइट सा जूता है। अब मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस चीज़ को, आप देखें कि हम मुसलमान खाने पीने की चीज़ों में और ख़ास तौर पर इस तरह हराम हलाल की चीज़ों में बाज़ दफ़ा बहुत अन केयरफुली चीज़ों को आगे से आगे बढ़ा देते हैं, इस पे केयर करें। अगर मुझे कानून पता है ना तो मुझे उसको पेश करना भी हो। अब मैं रोज़ तकरीबन वो जूता पहन रही हूँ तो मेरे लाशौर में आता है कि अगर ये जूता मैंने फेंक दिया होता पहले ही शुरू में, तो अब इस जूते के कुरान की तरफ आने जाने चलने में जो मेरी नेकियां जमा हो रही हैं तो ये मेरी ज़ाया हो जाती। तो कभी भी फजूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए, तहकीक कर ले, और वाकई अगर वो पिक का होता तो मैंने उन्हीं के काउंटर पे फेंक के आ जाना था, मुझे क्या लगे इससे। लेकिन मेरे दिल को ये तसल्ली हो गई कि नंबर एक कि मेरे पैसे नहीं ज़ाया हुए, और दूसरी बात ये है कि मैं कल किसी को पूरे यकीन से ये बात कह सकती हूँ। तो कभी भी कोई चीज़, बार दफ़ा ई मेल्स आती हैं, ये ई नंबर हैं, ये फलां हैं, फुल रिसर्च करें, आपका दिल करता है आप खाते हैं नहीं खाते किसी को, लेकिन जब भी कोई बात आप किसी दूसरे तक पूछे तो वही बात है कि 90 बेल में। बस ये छोटी सी बात थी कि बाज़ दफ़ा हम इन चीज़ों में फ़ौरन पटक से हराम कह देते हैं, या हम चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा फिर दूसरों को नेगेटिव सोच लेंगे, हाय फुलां देखो ये, हम इसको बड़ा नेक समझते हैं, ये पिक्की चीज़ खाता है, ये वो खाता है। तो ऑलवेज हमें इस चीज़ को सामने रखना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें करके अगली चीज़ इसमें क्या है, औ फिस्कन, इस पर कोई नहीं बात करता। और क्या हराम है इस्लाम में, फिस्क हराम है। यहाँ फिस का लफ्ज़ बाज़ लोग सोचते हैं लखमिल खिंजीर के साथ है, हालांकि अऊ के बाद आ रहा है। क्या चीज़ पहली हराम है इस्लाम में, बोलिए आयत में से, मैता, दूसरी दमम मसफूहन, तीसरी लखम खिंजीर, और चौथी फिस। कितने लोग हैं जो फिस को हराम समझते हैं, और फिस की तारीफ तो अब याद है ना आपको, फासिक कौन होता है, अल्लाह की हदों को तोड़ने वाला। तो यहाँ क्या बताया कि जिस तरह ये बाकी चीज़ें हराम है, इसी तरह ہر ناجائز گناہ کی چیز کون سی؟ اوہل لغیر اللہ بھی، جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا اس کو حرام قرار دیا. ہر وہ قربانی جو کسی دوسرے کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو، کسی بزرگ کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتے ہو، کسی اور کا نام، کوئی سبیل ہے، کسی امام کے نام کی، کسی قبر والے کے نام کی، جس میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کے قرب کو پانے کی خواہش ہو، یہ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک منت مانی تھی کہ میں بوانا نام کی وادی میں جا کر ایک اونٹ ذبح کروں گا، تو اب میں کیا اپنی وہ منت پوری کروں؟ تو اللہ کے نبی نے اسے بڑی لمبی جرح کی، تم نے یہ کیوں نیت کی کہ بوانا وادی میں جاؤ گے؟ کہا ایسے مشکل میں پھنسا ہوا تو میں نے نیت کر لی کہ شاید میں ایک مشکل کام کروں گا تو میرا کام ہوگا. کہا کیا وہاں کوئی بزرگ کی قبر ہے؟ کہا نہیں. کسی کا مندر ہے؟ نہیں. کوئی قبر ہے؟ نہیں ہے. کوئی کنویں جس کو لوگ معتبر سمجھتے ہیں؟ نہیں. کوئی درخت ہے؟ پوری تسلی کر کے آپ نے کہا اب جاؤ تو کر لو. تو کیا پتہ چلا کہ جب بھی کوئی انسان کام ایسا کرے تو اس کے بارے میں یہ میک شیور کرے کہ اس کام کو وہاں کرنے کی کوئی دلیل ہو. فرسٹ ہینڈ بات کروں گی، بہت سارے لوگ حرم میں جا کر کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں. تھوڑی تھوڑی دور جگہوں پہ وہ ہاتھوں میں تھیلیاں لے کر کھڑی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنے ریال کا ہوتا ہے، لوگ خریدتے ہیں اور وہیں لے کے وہ ڈال دیتے ہیں اور وہ سب دانے پاؤں میں آتے ہیں. اب یہ بتائیے، نبیونی بعلم ان کنتم صادقین، کوئی ایک آیت یا قرآن کی آیت یا حدیث مل جائے کہ جس میں اشارہ ہو کہ حرم کی حدود میں جانوروں کو کھانا کھلانا یا ان کو دانہ دینا زیادہ اجر ہے، تو پھر تو سو دفعہ. اسی طرح کسی کی بات، انہوں نے کہا کہ تھوڑی دو دن ہے تو میں آج بھی روزہ رکھ لوں. میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ کسی حدیث میں ہے کہ مدینہ میں آ کے آپ زیادہ روزے رکھیں گے تو اجر ہے؟ اب میری بات کس نے ماننی تھی؟ گھر والوں کی بات کو مانتا بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ اس شکر اس دفعہ علماء کا گروہ تھا، میں نے یہ سوال ان کے سامنے رکھ دیا، تو پھر انہوں نے ان کا شرح صدر کیا کہ آپ کوئی بھی نیکی کر لیں، لیکن اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں چونکہ ادھر تھوڑے دن آیا ہوں تو میں ہر دن روزے سے رہوں، تو نبیونی بعلم. بعض دفعہ ہم تقدس اور محبت کے نام پہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن بہت سیکیور رہنے کی ضرورت ہے. ہاں، اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجد نبوی کی ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے، اس میں تو کسی کو کوئی کوسچن نہیں. حرم کے اندر کی ایک نماز جو ہے وہ 1,00,000 نمازیں، نو کوسچن. حجر اسود کو چھو لو، نو کوسچن. سب کچھ، زمزم پیو، دعا مانگو، اس کے بعد میں اور آپ نہیں بول سکتے. آپ کے اسٹال پہ شاید بک ہو شرعی تبرک. تبرک کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بک ہے اور اس میں نا بہت موٹا موٹا لکھ کے ہیڈنگس کے ساتھ وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، موسٹلی جمع کی ہوئی ہیں، کہ اسلامکلی کون سی چیزوں کو واقعی ہم تبرک سمجھ سکتے ہیں. تو اگر کبھی موقع ملے تو آپ ضرور وہ بک پڑھیں، آپ کا ذہن کھل جائے گا. کیونکہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نبی کا جوتا، نال شریف اور موئے مبارک اور آپ کی فلاں فلاں، تو جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس کے بارے میں نہ سوچیں. اب یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد پھر دین کا حسن، فمن استر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو کوئی ان صورتوں میں بھی مجبور کر دیا جائے، نہ تو اس کے اندر بغاوت ہو. باغ کیا ہے؟ بغاوت کرنے والا، فاعل کا وزن ہے باغن. ولا عاد، اور نہ عادی ہو. سب سے آسان مجھے ترجمہ ان دونوں کا یہی لگتا ہے، حالانکہ اس کے اور بہت سارے مختلف ترجمے ہیں. یعنی حد سے نہ گزرے، طلب نہ ہو. باغ چاہنے والے کو بھی کہتے ہیں نا، جیسے ابتغا، بغی، تلاش، چاہنا. اور عاد سے عداوت، دشمنی. حدوں سے نہ بڑھنا چاہے، کہ پھر یہ نہیں کہ ہاں اب جائز ہے، لاؤ اب پورا مرغ مسلم لے کے آؤ تاکہ ہم پیٹ بھر لیں. تو کہا اگر ایسی مجبوری میں کوئی کھا لے گا، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو آپ کا رب بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ ساری باتیں پیچھے ہو گئی بھی ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہوئیں، سورت مائدہ میں ہوئی، یہاں تیسرا موقع ہے. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اہل کتاب کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے حلال کو ایک تو لوگ خود حرام کر دیتے ہیں نا، تقویٰ کے نام پہ یا کچھ باتوں پہ، ایک سزا کے طور پہ بھی ہوتا ہے. اگلی آیتوں میں آپ کو یہود کی سزا جو اللہ نے ان کو دی کیونکہ وہ اپنی مرضی سے دین میں تبدیلیاں کرتے تھے، اس کا تذکرہ دیکھیے گا. آیت 146، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان پر جو کہ یہودی ہوئے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، الَّذِينَ هَادُوا، یعنی ہم نے ان کو یہودی نہیں کہا، انہوں نے خود کہا. کیوں کہا؟ آپ پڑھیں گے سورۃ الاعراف کی اگر آیتوں میں آئے گا، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ان کا جملہ تھا کہ ہم آپ کی طرف ہدایت پاتے ہیں. تو گویا کہ یہ ان کا فرقہ وارانہ نام تھا، یہود کی طرف اشارہ ہے. ہم نے ان لوگوں کو جو کہ خود کو یہودی کہتے تھے حرمنا، ہم نے حرام کر دیا. کہاں حرام کیا اللہ نے؟ تورات میں یا اس کے بعد کے انبیاء کے ذریعے. کیا حرام کیا؟ کل ذی ظفر، ہر ناہن والے جانور کو. ظفر کہتے ہیں عربی میں ناہن، اظفار کا نام سنا ہوگا آپ نے حدیث میں آتا ہے ناہن، ٹھیک ہے. یہود پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ناہن، جس کو کھر کہتے ہیں نا، اس طرح کے جانوروں کو حرام کہتا، یعنی کھروں والے جو جانور ہیں یہ حرام تھے. اسی طرح دیکھیے کہ کچھ جانوروں کے پاؤں پھٹے ہوتے ہیں، چرے ہوتے ہیں نا آگے سے، جیسے گائے بکری وغیرہ. بعض کا ایک ہی کھر ہوتا ہے جیسے گھوڑا اور گدا. اللہ تعالیٰ نے ایک کھر والے جانور یہود پر حرام کیے تھے. کیوں کیے تھے؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. دوسری کیا چیز حرام کی؟ ایک تو کیا ہے؟ ذی ظفر، ناخنوں والے. دوسری فمن البقری، اور گائے میں سے. والغنمی، اور بکری. بکری کے لیے آج ہم نے کتنے نام پڑھے؟ جی بتائیے، ابھی ترجمہ نہیں یاد ہوا. جی کیا کیا تین لفظ آئے؟ دو گزر گئے، تیسرا بایا ہے. ماس پہلا، زان، اور تیسرا غنم، ٹھیک ہے. یہ غنم لفظ ہے جس سے مال غنیمت ہے، یہ سورۃ انفال میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ پہلے دور میں مال غنیمت میں عموماً بکریاں آتی تھیں، تو اسی کی طرف اشارہ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ گائے اور بکری حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کیا. کن پر؟ ہم کون ہے؟ یہود. الذین ہادو، کیا حرام کیا؟ شہومہما، ان دونوں کی چربیاں. کن دونوں کی چربیاں؟ بکر اور غنم کی. شہومہما، شہم سے شہوم، چربی کو کہتے ہیں، فیٹ کو. ہاں مگر، الا ما حملت ظہورہما، مگر جو لپٹ رہا ہو یا جو اٹھایا ہو ان کی پشتوں نے. جانوروں کی پشت کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کیسے گھاپا سا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اور دوسری چیز اول حوایا، یا انتڑیاں. یہ جو لفظ ہے نا حوایا، یہ حویت ان کی جمع ہے. حوایا کہتے ہیں انتوں کو، انٹسٹائنز، جو جسم کے اندر انتڑیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو اوپر شہوم ہے، یہ عموماً دمبے کے پیچھے ایک چربی کا چکلا سا ہوتا ہے لٹکا ہوا، اس کی طرف اشارہ ہے. ہم نے یہ ان پہ حرام کر دی. اور اگلی چیز ومختلط بیعظمن، اور جو کچھ لپٹ رہا ہو ہڈی کے ساتھ. اب آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں، مشکل لفظ ہیں لیکن ایک دفعہ آیت پوری ہو جائے. یہ سب کیوں کیا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے سزا دی ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور البتہ ہم سچے ہیں. دیکھیں، یہود کو تورات ملی تھی، بالکل سمپل کتاب تھی جیسے قرآن سمپل ہے، لیکن ان کی اس قسم کی باتیں دین کو تبدیل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کی شریعت کو سخت کر دیا تھا. جتنا شریعت کی رسی کو آپ گلے سے اتارنا چاہتے ہیں نا، یہ رسی تنگ ہوتی ہے. جیسے ایک بکری ہے نا، تو وہ اپنے دو گز کی رینج میں رہ کے چلے گی نا، تو وہ رسی اس کی حفاظت کرے گی، لیکن وہ دو سے ایک فٹ آگے نکل کے 3 فٹ پہ آئے گی نا، تو وہ رسی اس کے گلے میں پھنسے گی. جب قومیں اللہ کی دیوی شریعت کو خوشی سے مانتی ہیں نا، تو محفوظ ہوتی ہیں. یہود نے اس قسم کی حرکتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ ساری چیزیں جن کا تذکرہ ان کو حرام کر دیا. کیا بتایا گیا؟ کہ امت مسلمہ، تم اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام اور حلال نہ کرو. دیکھیں یہ بہت بڑا لفظ ہے. جس طرح ہم کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے نا، اسی طرح کسی حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے. پوری سورت نازل ہو گئی تھی سورۃ تحریم کی ایک موقع پہ. آگے دیکھیے آیت 147، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ آپ کا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے. وَلَا يَرُدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جاتا مجرم قوم سے. کیا بتا دیا؟ کہ اے نبی، اب دوبارہ اللہ کے نبی پہ خطاب آ گیا کہ یہود کی مثال کیوں دی گئی، کہ مکہ والوں کو بتا دو کہ اگر یہ اب آپ کو جھٹلائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت بڑی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرح جھٹلانے کی بات ہے، ساتھ ہی اللہ کے زور رحمہ ہونے کی بات ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں और इनके झुटलाने पे हम फौरन इनको पकड़ ले तो इनका जमीन में नाम तक भी नहीं होगा। ये अल्लाह की रहमत है कि जिसकी वजह से ये आपको झुटलाने के बावजूद भी दुनिया में चल फिर रहे हैं, वरना जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कोई उसके अजाब को टालता नहीं है। सूरह बुरूज में आता है, इन्ना बतश रब्बिक लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी शदीद है। तो गोया कि अल्लाह की पकड़ से लोग नहीं बच सकते। अब आखिरी दो आयतों में अल्लाह सुबहाना ताला ने इनके कुछ उजर की बात की है जो क्यामत के दिन भी होगा। आयत 148, सयकूलुल्लज़ीन अशरकू, अन करीब वो लोग कहेंगे जिन्होंने शिर्क किया, यानी मुशरिक लोग अन करीब कहेंगे। ये कब होगा? अन करीब के नीचे लिख लीजिए क्यामत के दिन। यहाँ से आप इन्वर्टेड कॉमा बना लें, ये उनका कॉल है। लो शाह अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता, मा शरकना, ना हम शिर्क करते, वला आबाउना, और ना हमारे बाप दादा शिर्क करते। नंबर एक, देखिए हठधर्मी करते कराते सब कुछ होते और इल्ज़ाम लगाते हैं किस पे? नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह पे। ये वही जुमला है जो अक्सर लोग कहते हैं, अल्लाह चाहता तो मैं रोक लेता, हम गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह ना करवाता, शराब पीती अल्लाह रोक सकता था ना, तो क्यों नहीं रोकता? तकदीर का इशू है। ऐसे लोग असल में अल्लाह ताला की मशीयत और उसकी रज़ा का फ़र्क नहीं समझते। आज भी लोग घूम जाते हैं ये बात सुन के, हमें अल्लाह ताला ना डालता इस गलत चीज़ में, समझ रहे हैं? तो यहाँ समझ लीजिए एक हल्का सा असूल कि अल्लाह ताला की तकदीर के दो हिस्से हैं, एक हिस्से को कहते हैं मशीयत और एक को कहते हैं रज़ा। दुनिया का हर काम जो हो रहा है ना, दुनिया में हर अच्छा बुरा, चोरी जिना कुछ, ये अल्लाह की मशीयत से हो रहा है। मशीयत के लफ्ज़ में क्या लफ्ज़ छुपा हुआ है, कोई बताएगा? दो बड़े मारूफ जुमले हम बोलते हैं जी, शाबाश, इंशाअल्लाह, शाह और माशाअल्लाह, ठीक है। तो मशीयत क्या है कि दुनिया में जो कुछ होता है वो अल्लाह की शाह से होता है, अल्लाह की कुदरत, उसकी परमिशन से। लेकिन दूसरी चीज़ है रज़ा। ये कौन सी चीज़ें हैं? वो चीज़ें जो होती तो अल्लाह की मशीयत से हैं और अल्लाह उससे खुश भी है। कुरान पाक में आगे हम पढ़ेंगे कि अल्लाह नहीं चाहता अपने बंदों के लिए शिर्क हो, यानी अल्लाह सुबहाना ताला दुनिया में सब कुछ होने देता है लेकिन ज़रूरी नहीं उसे पसंद करे। ये बिल्कुल ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है ना कि इसका रुझान है गलत काम पे, तो कहती है अब करने दो, इसको बाद में पूछूंगी, तो माँ खुश नहीं होती। अल्लाह सुबहाना ताला के लिए कोई मिसाल नहीं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये शिर्क करते खुद हैं अपने बाप दादा के नाम पे, लेकिन बाद में कहते हैं अल्लाह रोक लेता। और दूसरा उजर क्या करते थे? वला हर्रमना मिन शयिन, और हम तो किसी चीज़ को हराम ठहरा ही नहीं सकते थे अगर अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ताला कहते हैं कज़ालिका कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह झुटलाया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। हत्ता ज़ाक़ू बासना, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मज़ा चख लिया। ऐसी बातें करके अल्लाह के अजाबों को दावत देते हैं। कुल, कह दीजिए, हल इंदकुम मिन इल्मिन, है तुम्हारे पास कोई इल्म? किस चीज़ का इल्म बताइए? ये जिस शिर्क करते हो या हराम ठहराते हो या जो बातें दीन के नाम पे करते हो, कोई इल्म है? फतुखरिजूहु लना, बस निकालो उसको हमारे लिए, पेश करो हमें, कोई भी नहीं है, खामोशी है ही कोई नहीं, दलील है ही कोई नहीं, कुंडों की तो कहाँ से निकालें, कोई दलील ही नहीं है ऐसे उल्टे सुलटे कामों की जो अमूमन लोग करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं फिर है क्या? इन तत्तबेउन इल्लज़न, नहीं ये पैरवी करते मगर गुमान की। वही नन तुम इल्ला तखरुसून, और नहीं है ये मगर सिर्फ अटकल और अंदाज़ों की बातें करते। बात वाज़े, कितनी दफ़ा रिपीट हो गई ये बात कल के सबक से अब तक कि ये सिर्फ इनके गुमान है, इनकी विशफुल थिंकिंग है। आयत 149, कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, कह दीजिए बस अल्लाह के हक में साबित हो चुकी है पूरी पहुंचने वाली हुज्जत, यानी इस कट हुज्जती जो तुम पेश कर रहे हो इसके मुकाबले में हकीकत सिर्फ अल्लाह की हुज्जत की है। मतलब क्या है कि बात वही मानी जाएगी जो अल्लाह की है। इसका ऐसे समझे जैसे एक पाउंड है ना, पाउंड का बेला गवर्नमेंट की तरफ से है ना, ये असली है, इसके मुकाबले में कोई इससे भी खूबसूरत नोट बना ले एक्सेप्टेबल होंगे? तो आप कह सकते हैं कि ये जो असल पाउंड का बेल है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है, तो यही यहाँ मुराद है। अल हुज्जतुल बालेगा बहुत मारूफ किताब है शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह की, कि असल जो हुज्जत पहुंचेगी एंड पे वो अल्लाह सुभान व तआला ही की है, बाकी मेरी आपकी खानदानों की बातें इसको पीछे कर दीजिए। फलो शाह अल हदा को मजमाइन, बस अगर वो चाहता तो तुम सब को हिदायत पर ले आता, सब अबू बकर जैसे नेक हो जाते, सब बिलाल जैसे हो जाते। तो आप पूछेंगे फिर क्यों नहीं किया, तो जवाब मिलेगा सूरत मुल्क में कि खलक अल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसने मौत और हयात का निज़ाम पैदा किया ताकि तुमको आजमाए, ताकि देखे कि तुम क्या करते हो। तो आखिरी आयत है सबक की, आयत 150, कुल हलुम शुहदाअकुम, फिर ले आओ, कह दीजिए ले आओ अपने गवाहों को, कौन से अल्लज़ीन यशहदून, जो ये गवाहियां दे सके, क्या अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा, कि अल्लाह ने इन चीज़ों को हराम करार दिया। फिर फाइन शहीदू, फिर वो सारे आके गवाही भी दे दे, तो मान लेना, फिर बताइए क्या फिर मान लेनी उनकी बात, नहीं माननी। फला तशखत माहुम, फिर भी उनकी बात ना माने, या अक्सरियत की बात है। अमूमन हम गलत काम होते देखते हैं तो हम कहते हैं क्या करें, जब इतने लोग कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है। तो देखिए एक नबी के मुकाबले में पूरी कौम भी आ जाएगी ना गलत काम करने वाली, तो बात किसकी है, हुज्जत एक नबी की। तो अल्लाह कह रहा है सारा खानदान, सारी सोसाइटी भी अगर उस बात की गवाही दे दे, हाँ हाँ ये करना चाहिए, ये करते थे हमारे खानदान के लोग, फिर भी तुम कभी भी उनके साथ गवाही ना देना। असल बात के कि वला तत्तबि अख्वाल्लज़ीना कज़्ज़बु बिआयातिना, और मत पैरवी कीजिए उन लोगों की ख्वाहिशों की जिन्होंने हमारी आयतों को छुटलाया। ये असल बीच में से बात निकली है। अल्लाह के मुकाबले में जो शरीयत होती है ना, इसमें हवा होती है, वही पीछे वाला सबक, हुदन बमुकाबला हवा। अल्लाह का दीन हुदन है, गाइडेंस, हुदन लिल मुत्तकीन, ए दीन सिरातल मुस्तकीम। इसके पैरेलल एक दूसरी शरीयत जो सोसाइटीज में चलती है ना, वो हवा है, लस्ट, ख्वाहिश। वल्लज़ीना ला यूमिनूना बिल आखिरा, और जो लोग ईमान नहीं लाते आखरत पे, वहुम बि रब्बिहिम यादिलून, वो अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। आप देखिए कि इस सूरत की पहली आयत क्या थी, कहाँ ख़त्म होती थी, सुम्मल्लज़ीना कफरू बि रब्बिहिम यादिलून, और अब यहाँ फिर आ रहा है वहुम भी रब्बीम यादिलून। शुरू में मुझे कभी समझ नहीं आता था कि यादिलून तो अदल है, और अदल तो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन क्या पता चला कि अल्लाह के बराबर दूसरे को कर देते हैं। तो पूरे सबक का जो खुलासा निकला वो क्या है, कोशिश करें लफ्ज़ों में बताएं जुमलों की बजाय, यानी ब्लाइंड फॉलो नहीं करना, ठीक है। और जी आप
उस पे दलील के साथ चलेंगे, सुन्नत को भी फॉलो करेंगे इसके साथ साथ, तो ही हम सही रास्ते को पा।
देखिए दीन को तो छोड़ दे, दुनिया के काम भी तो दलील पे ही हो रहे हैं। आप पूरे लंदन या यूके के कवानीन की दलील पे यहाँ चलते फिरते हैं ना, कोई एक ऐसा बंदा आपसे बात करवा सकते हैं जो यहाँ के लॉ में नहीं है, झूठ बोल के नहीं करता। तो फिर दीन के मामले में ब्लाइंड फेथ क्यों। देखिए मुझे जो बात समझ आई है ना, इतनी तकरार से आज के और कल के दोनों सबकों को आप जोड़ के देख लीजिए, इतनी तकरार से हराम हलाल पे, वो उसको खाए उसको ना पिए, ये ना करो, इस पे तो अल्लाह ने नमाज का भी जिक्र नहीं किया कुरान में, रोज़े का जिक्र इतना नहीं है, हज का जिक्र नहीं है इतना, जिहाद का ऐसे जिक्र नहीं है। क्या पता चलता है कि ये चीज़ें जब तक नहीं कट डाउन होंगी दीन का गलबा नहीं होगा जी। तो इससे ये भी तो पता चला कि जो साथी ये काम कर रहे हैं बाहर बैठे हुए, वो आपकी बातों से नहीं मानेंगे, वो कब मानेंगे इन बातों को। इसलिए यहाँ बैठ के जो बात समझ आती है ना, वो यहाँ से बाहर जाके नहीं समझ आती, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको इल्म का शौक लगा दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।